प्रदान की। तो ये सब हम लोग पिछली बार सुन चुके हैं। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया मार्कंडेय ऋषि से कि ऐसा क्यों हुआ, द्रौपदी ने ऐसा क्या किया था कि इसको ये सब सहन करना पड़ा, तो उन्होंने कथाएं सुनाई, भगवान श्री राम की कथा सुनाई कि किस प्रकार सीता देवी का विहरण हुआ था। और फिर उन्होंने सावित्री और सत्यवान इसकी कथा भी, इनकी कथा भी युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। ये कथा हम लोग पिछली बार सुन चुके हैं, इस प्रकार सावित्री ने अपने निश्चय से, दृढ़ निश्चय से ब्रह्मा जी के या यमराज के जो नियम थे या इस सृष्टि के नियम थे उसको बदल दिया। तो ये कथा हम लोगों ने पिछली बार सुनी कि किस प्रकार उसके सत्यवान के जो पिता थे उनको पुनः दृष्टि प्राप्त हुई। और आगे चलकर केवल दृष्टि ही नहीं, जैसे कि यमराज ने वरदान दिया था, उन्हें उनका राज्य भी प्राप्त हुआ। जिस राजा ने उनके राज्य पर राज्य करना प्रारंभ किया था उसके ही मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचकर उसको मार डाला। और फिर उन्होंने आकर सत्यवान के पिता से याचना की कि आप चलिए और अपना राज्य संभालिए। और इस तरह से फिर से उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जैसे सावित्री की शक्ति के कारण सब कुछ प्राप्त हुआ था सत्यवान को और उसके पिता को, इसी प्रकार द्रौपदी के कारण आपको सब कुछ पुनः प्राप्त होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से इस कथा को लवश ऋषि ने सुनाया। और फिर उसके बाद लवश ऋषि ने ये वर्णन किया कि इंद्र ने उन्हें एक संदेश दिया था और उनसे ये कहा था कि अभी नहीं बताना जब तक अर्जुन वापस नहीं आए, और अर्जुन वापस आने के बाद युधिष्ठिर को ये संदेश देना कि मैं उनकी एक बहुत बड़ी सहायता करने वाला हूँ, इस रहस्य को बतलाना। तो अब ये समय था, करीब 12 वर्ष उनके वनवास के पूरे होने वाले थे, 13वें वर्ष में वो प्रवेश करने वाले थे। 13वें वर्ष में जैसे कि हम सब जानते हैं उन्हें अज्ञातवास करना था। तो इस समय पर लोमश ऋषि ने इंद्र का संदेश युधिष्ठिर महाराज को सुनाया, और वो संदेश था कर्ण के विषय में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कर्ण के विषय में जानना चाहा कि कैसे इसको ये कुंडल प्राप्त हुए। उस पर्व का नाम, उस अध्याय का नाम दिया गया है कुंडल हरण पर्व, कि किस प्रकार इंद्रदेव ने कर्ण के कुंडलों का हरण कर लिया। हरण किया अर्थात मांग कर ले गए। तो उस समय लोमश ऋषि ने कथा सुनाई जिसको हम लोग कई बार सुन चुके हैं, तो संक्षेप में उसको सुनाते हैं कि सूर्यदेव को जब ये पता चला कि इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल ये उनसे मांगने जा रहे हैं, और कर्ण ने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगेगा मैं उन्हें तुरंत वो चीजें प्रदान कर दूंगा, तो इसीलिए एक ब्राह्मण के रूप में सूर्यदेव आए और वो कहने लगे कर्ण से कि कर्ण देखो कुछ ही समय में इंद्र आने वाले हैं तुमसे याचना करने के लिए, और क्या मांगने वाले हैं, वो एक ब्राह्मण के रूप में आएंगे और तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांग लेंगे, लेकिन तुम देना नहीं, क्योंकि अगर तुमने कवच और कुंडल दी तो बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अपने कवच और कुंडल संभाल कर रखना और इंद्र को मना कर देना, उसको कहना कुछ और मांग लो लेकिन ये चीज मत देना। तो उस समय कर्ण ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये वचन लिया है और मैं ये कुंडल और कवच देकर अपनी कीर्ति को बनाए रखूंगा, मेरा नाम होगा, लेकिन इंद्र की बदनामी होगी कि इंद्र ने ऐसे ले लिया, इसीलिए मैं ये कवच और कुंडल दे दूंगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या भाव था कर्ण का। कर्ण कवच और कुंडल इसलिए नहीं देना चाहता था कि उसके हृदय में दान की भावना थी, जैसा कि बहुत लोग इस चीज को मानते हैं। कर्ण का बहुत गुणगान होता है इस बात पर कि देखो वो जानता था कि इंद्र उसके कवच और कुंडल ले जाएंगे जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने वो दे दिए, कितना बड़ा दानी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन महाभारत में वर्णन आता है कि कर्ण ने कहा कि मैं अपनी कीर्ति को समाप्त नहीं होने दूंगा, अर्थात वो अपने यश से प्रतिष्ठा से ज्यादा आसक्त था। वो चाहता था कि कहीं ऐसे धब्बा नहीं लग जाए कि इंद्र कर्ण ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। तो अगर इस दृष्टि में देखा जाए तो हम लोग कितने सारे ऐसे क्षत्रियों को जानते हैं जो अपने, हम लोगों ने इतिहास में सुना है, जो अपने वचन को बनाए रखने के लिए प्राणों को देने के लिए तैयार है। फिर उन सबको भी कर्ण की ही श्रेणी में लाना चाहिए, फिर कर्ण को क्यों हम लोग दानवीर कहते हैं। तो कर्ण ने कहा कि मेरी कीर्ति चली जाएगी, मेरा यश समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मैं ये दे दूंगा। तो सूर्य देव ने कहा, बहुत समझाया, लेकिन कर्ण ने नहीं माना। फिर सूर्य ने कहा ठीक है, कम से कम तुम उनसे एक ऐसा अस्त्र प्राप्त कर लेना, उनके पास ऐसे अस्त्र हैं जिसको चलाने से सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, वो कभी खाली नहीं जाता। तो कर्ण ने कहा ठीक है। तो फिर जब इंद्र आए मांगने के लिए कवच और कुंडल, इंद्र ने याचना की, तो उस समय कर्ण ने मना कर दिया। कर्ण ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, राज्य चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, हीरे चाहिए, मैं सब तुम्हें दूंगा, लेकिन ये कर्ण, ये कुंडल और कवच नहीं दूंगा। देखिए कितने लोग जानते हैं इस बात को, सब लोग सोचते हैं कि कैसे अचानक बस मांगा और निकाल कर दे दिया। नहीं, कर्ण ने कहा मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो इंद्र ने कहा नहीं, ये सब चीजें आप उन्हें देना जो इनको मांगते हैं, मुझे तो केवल आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो बहुत समय होने के बाद फिर कर्ण ने इंद्र से कहा कि मैं जानता हूं, मुझे पहले से पता था कि आप आने वाले हैं। तो इंद्र ने कहा हाँ, सूर्य ने आपको बताया होगा। उसने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको ये दूंगा, आपको इसके बदले में मुझे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अस्त्र प्रदान करना होगा, क्योंकि इंद्र ने कहा था, उसने कहा था मुझे बदले में कुछ चाहिए। देखिए वैसा दान जिसके बदले में कोई आशा की जाए वो सही दान नहीं है, उसको दान नहीं मानना चाहिए। जब हम बदले की कोई आशा करते हैं, ये व्यापार है, जैसे हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, और फिर उनसे कोई आशा करते हैं कि मेरे सारे विघ्न हरण कर लें, मुझे धन दिला दे इत्यादि, तो इससे कुछ दान धारण करते हैं। तो कर्ण ने भी कहा कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो इंद्र ने कहा था कि मेरा वज्र छोड़कर तुम्हें जो अस्त्र चाहिए मांग लो। तो उस समय उन्होंने एक ऐसी शक्ति मांगी, एक ऐसा अस्त्र मांगा जो अचूक है, एक बार अगर छोड़ा जाए तो फिर वो शत्रु का वध करके ही वापस आता था। तो इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें ये अस्त्र प्रदान करता हूं, ये अचूक अस्त्र है, जब मैं इसे छोड़ता हूं तो यह शत्रु का वध करके मेरे पास वापस आ जाता है, लेकिन तुम्हारे पास केवल एक बार रहेगा, जब तुम इसे चलाओगे तो फिर तुम्हारे शत्रु का वध करके ये मेरे पास वापस आ जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए एक बार तुम इसे चला सकोगे। लेकिन ऐसी अवस्था में चलाना जहां तुम्हारे ऊपर मृत्यु का भय हो, जो तुम्हारी इतना सारा आक्रमण हो जाए कि अगर तुम इसे ना चलाओ तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उस समय चलाना। अगर ऐसे समय में नहीं चलाओगे तो फिर ये तुम्हारी ही हत्या कर देगा। तो उस समय कर्ण मन में अर्जुन का विचार कर रहे थे और कर्ण ने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, एक व्यक्ति है जिससे मैं भयभीत हो सकता हूं, जो मुझे मृत्यु का भय दिला सकता है, और ये मैं केवल उसके लिए ले रहा हूं। तो इंद्र समझ गए। तो इंद्र ने कहा कि ये तो ठीक है कि अचूक वह अस्त्र है और ये उस व्यक्ति का निश्चित अंत करेगा जिसके ऊपर ये चलाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ तुम ये भी जान लो, तुम जिसकी हत्या करने का विचार कर रहे हो उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। इंद्र ने समझा दिया उसे कि तुम, और उन्होंने फिर कृष्ण का भी वर्णन किया कि कृष्ण कौन है, जिनको वेदों में, शास्त्रों में, जिनको सारे ब्रह्मांड के स्वामी नारायण के रूप में जाना जाता है, वही श्री कृष्ण है। और जब वो रक्षा कर रहे हैं अर्जुन की, तो ये जान लो कि उसे कोई नहीं मार सकता। फिर भी तुम ये अस्त्र चाहते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूं। अर्थात इंद्र ने ये उसे समझा दिया कि अस्त्र लेने से तुम अर्जुन को मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं। अर्थात एक दृष्टि से इंद्र कह रहे थे कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, भगवान करते हैं, देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते उसका। और ये स्वाभाविक है, जैसे जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का आतंक बहुत फैल गया इस ब्रह्मांड में, हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, बहुत उत्पात मचाया, तो सारे देवता भागे ब्रह्मा जी के पास कि आप कुछ कीजिए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये दोनों जय और विजय है, और जब भगवान चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर उत्पात हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने इन दोनों को भेजा है उत्पात करने के लिए, तो फिर मैं कैसे रोक सकता। तो ये देवताओं की स्थिति है, देवताओं की शक्ति सीमित है। हाँ, हमारी शक्ति के सामने उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन कृष्ण की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। कितने सारे उदाहरण हम देख चुके हैं, इंद्र के ही उदाहरण है, ब्रह्मा जी का उदाहरण है, शिव जी का उदाहरण है। तो सर्वशक्तिशाली देवता जब अपनी शक्ति कृष्ण के सामने नहीं दिखला सकते, तो फिर बाकी देवताओं का तो कहना ही क्या। तो इंद्र ने इस बात से ये समझाया कि मेरी कोई शक्ति नहीं है कृष्ण के सामने, तो ये जो अस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, भले ही तुम बहुत खुश हो रहे हो कि इससे तुम अर्जुन को मारोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी ही बता रहा हूं कि अर्जुन को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं। फिर भी कर्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। कर्ण ने वो अस्त्र लिए, अपना कवच और कुंडल निकाल कर दे दिया। महाभारत में वर्णन है कि कर्ण ने कवच कुंडल देते समय उनसे कहा कि मेरा जैसा शरीर है वैसा ही रहना चाहिए, मैं कुरूप नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं ना सब निकालेगा, यहाँ से काटेगा, शरीर से काटेगा तो शरीर खराब हो जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। तो इंद्र ने कहा ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, सुंदर रहोगे, चिंता नहीं करो। तो फिर ऐसे कर्ण ने ये दान दे दिया, इंद्र चले गए। तो ये कथा युधिष्ठिर महाराज को बताई, ऋषि ने कि ऐसे ऐसे हुआ। यहाँ पर जब पांडव वापस आए इस वन में द्रौपदी के हरण के बाद, तो फिर वहां पर रह रहे थे। और अब इसके बाद, इस संवाद के बाद, एक बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। आज हम लोग उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। और ये प्रसंग है यक्ष संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच बहुत सुंदर संवाद हुआ था। हम लोग केवल एक दो प्रश्न जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, सब लोग यमलोक की ओर जा रहे हैं, दूसरों को लोग देख रहे हैं लेकिन खुद जाएंगे ऐसा नहीं, ये आश्चर्य है। ये केवल आखिरी उत्तर था, आखिरी प्रश्न था, जिसको हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन करीब 100 प्रश्न यक्ष ने पूछे थे और 100 उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिए थे। हमारी इच्छा थी हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करते, लेकिन वो 100 प्रश्न चर्चा करते करते 100 मंगलवार निकल जाएंगे और शायद तब तक आप लोग भूल जाएंगे कि महाभारत स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो इसलिए हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर को लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे जो भक्ति से बहुत ज्यादा संबंधित हैं, जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो जब ये लोग वन में रह रहे थे तो एक ब्राह्मण थे जो अग्नि जलाकर यज्ञ किया करते थे, और वो अग्नि जलाते थे दो लकड़ियों से, घर्षण करके अग्नि उत्पन्न करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने वो लकड़ियां रखी हुई थी पेड़ के ऊपर, और अचानक एक हिरण आया और वो पेड़ पर अपना सर खुजलाने लगा, और अचानक वो लकड़ियां उसके सींग में फंस गई। तो फंसने से वो बहुत घबरा गया और भाग गया वहां से। तो अभी बेचारा ब्राह्मण जंगल में रहता था, इसके पास यही दो तीन चीजें थी, दो लकड़ी और एक डंडा था, वो सब चला गया। अब उसके पास तो इतनी शक्ति नहीं थी कि हिरण के पीछे भागे। तो फिर भागता हुआ आया पांडवों के पास, याचना करने लगा, कहने लगा कि आप रक्षा कीजिए मेरी, नहीं तो मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। तो पांडवों ने सोचा कि क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि वे ब्राह्मणों की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, तो इसीलिए हमें जाना चाहिए। तो पांचों भाई भागे उस हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन बड़ा फुर्तीला था, बहुत तेज भाग रहा था, बड़ा प्रयास किया इन्होंने, तीर चलाए, सब कुछ कर लिया जो कर सकते थे, भाले फेंके, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया और अंत में ये लोग थक गए। तो बड़ा आश्चर्य होने लगा पांचों पांडवों को, और आपस में बात करने लगे कि ये कैसे हुआ। सहदेव कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग पांच पांडव जो इतने बड़े बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कि हम इतने सारे युद्ध करेंगे, एक हिरण को नहीं पकड़ पाए, क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारी सारी शक्ति चली गई। तो उस समय भीम ने कहा कि जिस समय वो सेवक द्रौपदी को ला रहा था, मैंने उसका वध नहीं किया, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसी हमारी सारी शक्ति चली गई है, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसी विपदा आई है। और फिर नकुल कहने लगा, हाँ मैंने शकुनी का वध नहीं किया उस समय जब उसने आपके साथ धोखा किया था, युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, और इसीलिए हमारे ऊपर सारी विपदा आई है। तो ऐसे बात करने लगे वृक्ष के नीचे बैठकर, बहुत थक गए थे और बड़ी प्यास लग रही थी। तो उस समय भूख और प्यास लगी हुई थी, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने नकुल से कहा कि तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ो और देखो चारों ओर कि पानी कहाँ पर है, क्योंकि बहुत प्यास, और अचानक पांचों को बहुत तेज प्यास लगी, तो देखो पानी कहाँ पर है। तो नकुल ने देखा सब दिशाओं में, तो एक दिशा में उसको बहुत सारे कुछ पक्षी दिखाई दिए, कुछ पेड़ दिखाई दिए, उसने कहा शायद लगता है पानी उस तरफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और पानी लेकर आ जाओ हम सबके लिए। नकुल गए, वहां पर उन्होंने देखा बहुत सुंदर स्वच्छ जल था, वहां पर पक्षी भी थे, वो जल पीने ही जा रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि रुक जाओ, ये जो संपत्ति है ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका स्वामी हूं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर तुम इस जल को पियोगे तो तुम मर जाओगे। नकुल ने ध्यान नहीं दिया, प्यास बहुत लगी थी, उसने पानी पी लिया, जैसे ही पानी पिया उसकी मृत्यु हो गई। फिर युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को भेजा, सहदेव ने भी देखा लेकिन उसको प्यास इतनी लगी थी कि उसने भी पानी पी लिया, उससे भी यही कहा गया। फिर उसके बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने भी यही किया। भीम को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने कि जाओ देखो क्या हुआ है, तीन लोग गए हैं कोई पानी नहीं लेकर आए। तो फिर भीम भी आए और भीम ने देखा, तो भीम को लगा कि अब मुझे बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, किसी ने मेरे तीनों भाइयों को मार दिया है तो स्वाभाविक है मुझे बहुत युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध करने से पहले मैं पानी पी लेता, प्यास बहुत लगी है, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो बीच में तो उनको नहीं कह सकता भाई, बच्चे जब खेलते हैं ना बीच में कुछ करते, क्या बोलते हैं टाइम प्लीज, और कुछ तो टाइम ले लेते हैं बच्चे की, भाई अभी बंद करो थोड़ी देर बाद में फिर शुरू करेंगे। तो भीम को पता था एक बार युद्ध शुरू हुआ तो वो तो नहीं कर सकता कि भाई प्यास लगी थोड़ा रुक जाओ, किसी का पहले पी लेता, तो उसने भी पानी पी लिया, उसकी मृत्यु हो गई और भी गिर पड़े। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कोई आए नहीं, चारों चले गए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज स्वयं आए वहां पर और उन्होंने देखा कि चारों भाई मृत पड़े हैं, बड़ा शोक करने लगे, बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर इतना बड़ा योद्धा जिसने मेरे चारों भाइयों को, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण योद्धा नहीं है, अर्जुन भीम नकुल सहदेव इनको मार दिया, कौन है ये? बड़ा विलाप करने लगे। लेकिन जब उनके शरीरों को देखा तो उन्होंने देखा कि कोई हथियार का निशान नहीं है, कोई युद्ध का निशान नहीं है, ऐसा तो लगता नहीं कि कहीं बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसमें मारे गए। और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वैसे के वैसे ही रखे हैं, कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिख पड़ता कि युद्ध हुआ हो, तो फिर कैसे मर गए? और उनके शरीर भी मृत नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है शरीर को उठाने से कि इनके प्राण चले गए। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि जरूर कोई दैवी शक्ति के कारण ऐसा हुआ है। तो इसीलिए वे गए, फिर उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा पानी पी लें, जल पी लें। तो उस समय वो जल में प्रवेश करने लगे, जल लेने लगे, तो उनको भी यही कहा, उन्होंने कहा, आवाज सुनाई दी उनको कि युधिष्ठिर ये जो संपत्ति है इसे मैं, इसका मैं स्वामी हूं, ये पहले से मेरे कब्जे में है और इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर तुम जल पियोगे तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज रुक गए। यहां से इस यक्ष संवाद की पहली शिक्षा प्रारंभ होती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो चीज पहले से आपकी है, आपकी संपत्ति है, मैं उसको नहीं लूंगा। तो ये पहला संदेश या पहला चीज हम लोग इससे सीखते हैं, पहली शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं कि जो किसी दूसरे की संपत्ति है उसका भोग हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने उदाहरण से सिखलाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उन चारों को भी कही गई थी कि ये मेरी संपत्ति है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले कहा कि यह आपकी संपत्ति है, मैं इसका स्पर्श भी नहीं करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, आप पूछिए क्या प्रश्न पूछे। तो पहला शिक्षा, पहला निर्देश हम इस यक्ष सम्मान से सीखते हैं कि किस तरह दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। इस जगत में सारी तकलीफें सारे कष्ट इसीलिए हैं कि हम दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते हैं। भगवान ने सबके लिए दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मामृत कश्चित विधनम्। भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया है, थोड़ा थोड़ा कोटा सबका दिया है, लेकिन जब हम उसको छोड़कर और ज्यादा की कामना करते हैं, दूसरे का हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, जो चीज दूसरे के स्वामित्व में है ये दूसरे के लिए बनी है, दूसरे की संपत्ति है, उसको जब हम हरण करने का प्रयास करते हैं तो उत्पात होता है और अंततः अगर हम लोग देखें तो सारी संपत्ति कृष्ण की है, हमारा क्या है? केवल ये तो इस भौतिक जगत में रहते हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके लिए कोटा दिया गया है, इतना इतना आपके लिए है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। लेकिन हमारा क्या कोटा है, हमारी क्या संपत्ति, हम कैसे कह सकते हैं ये मेरे लिए है, ये मेरा? हम किस चीज को कह सकते हैं कि मेरा? ईश्वर परिषद में भले ही कहा हो तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन क्या चीज आपकी है? जो मैंने मेहनत से धन कमाया वो मेरा है, जो मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया वो मेरा है, जो मैंने बड़ी फैक्ट्री बनाई वो मेरी है, जो मैंने बहुत बड़ा समाज बनाया वो मेरा, क्या है? सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए हमारा कोई कोटा है ही नहीं। ये तो केवल कृपा है कृष्ण की कि वो अपनी संपत्ति हमें इस्तेमाल करने के लिए दे रहे। तो इसीलिए बाहर वालों को तो ये बड़ा सावधान होना चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का हरण नहीं करें, इससे बड़ा उत्पात होता है। लेकिन भक्तों को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण की संपत्ति का हरण नहीं करें। जैसे प्रभुपाद ने समझाया, मायापुर में एक समय एक व्यक्ति को लेकर आए, उन्होंने कहा कि ये शीशा बनाता है, कांच बनाने की इसकी फैक्ट्री। प्रभुपाद ने कहा चोर है, लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद ये मंदिर को डोनेशन भी देता है तो क्या हो गया, छोटा चोर है, चोर तो है। तो उसको भी समझ नहीं आया, तो उसने कहा कहाँ से मिलता है तुम्हें सामान कांच बनाने के लिए, क्या क्या लगता है? उसने कहा ये लगता है रेत लगती है, कहाँ से लाते हो रेत? रेत तो पड़ी हुई हो, ले पड़ी नहीं है, कृष्ण की संपत्ति है, तुम चोरी करते हो उसकी। तो वैसे सब कुछ कृष्ण का है। तो इसलिए बहुत सुंदर बात हम लोग यक्ष संवाद के प्रारंभ में सीखते हैं कि हमें केवल कभी भी किसी दूसरे की स्वामित्व में जो संपत्ति है उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, और भक्त होने पर हमें ये जान लेना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है। वस्तुतः सकलि तब जीवे के होना है, भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं, सब कुछ तो कृष्ण का है, जीव का क्या है। प्रभुपाद भी इसी बात को समझा रहे थे अपने जीवन के अंत में, जब वो आखिरी समय में थे तो यही बात बता रहे थे कि सब कुछ कृष्ण का है, जो व्यक्ति ये जान जाता है वो कृष्ण धारणा भावित है। इस चीज को समझना, वस्तुतः सकलि तब जीवे के होना, जीव का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का। तो अगर बाहर वाले लोग केवल अपनी अपनी संपत्ति का उपभोग करें तो उत्पाद नहीं होगा, इसी प्रकार अगर भक्त समाज में हम ये सब जाने कि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए हमारे उपभोग के लिए कुछ भी नहीं है, हमें किसी चीज का भोग नहीं करना है। हमें ये समझना है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एक ही भोक्ता है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार अगर हम लोग इस बात को समझ जाएंगे तो जैसे युधिष्ठिर महाराज की मृत्यु नहीं हुई, युधिष्ठिर महाराज ने वो गलती नहीं की, वैसे ही भक्ति में हमारी मृत्यु नहीं होगी, वैसे ही हम बने रहेंगे भक्ति में। लेकिन इस बात को समझना, वस्तुतः सकलि तब जीवे के गुणा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, आप पूछिए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो बहुत से प्रश्न करने प्रारंभ किए यक्ष ने। पहले तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था आप हैं कौन, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं एक पक्षी हूं, यहाँ रहता हूं इत्यादि। तो प्रश्न पूछने लगे, उसमें से कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ज्ञान क्या है, या ज्ञानी कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था, बुद्धिमानी व्यक्ति वो है जो वेदों को जानता है। वेद अर्थात ज्ञान, जितना भी ज्ञान है इस जगत में वो सब वेदों से आता है, और वेद ही हमें सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। वेद हमारे जीवन के लिए एक संहिता के समान है, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें निर्देश देते हैं, निर्देश पुस्तिका है वेद। और वेदों की वाणी ये भगवान की वाणी है। भगवान के अलग अलग वर्णन है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की धुन से वेद प्रकट हो जाते हैं, जब नरसिंह देव आते हैं जोर से दहाड़ते हैं, शरीर उनका थरथराता है, तो उससे वेद प्रकट हो जाते हैं। अलग अलग वर्णन है, लेकिन मूलतः भगवान के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं वेद। तो इसलिए जो वेदों को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। इस भौतिक जगत का ज्ञान होना कोई बुद्धि नहीं है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो जाए, अपनी बुद्धि चला चला के बहुत धन कमा ले, लोगों को धोखा दे दे के, और सोचे कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, कुछ नहीं, अंत में सब जीरो, क्या रहेगा अंत में, क्योंकि जीवन के अंत में तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा ना। जिस चीज को बड़ी मेहनत से हम लोग कमाते हैं, बहुत मेहनत कर करके उसको इकट्ठा करते हैं, अंत में क्या होता है? एक बड़ी सुंदर कथा है, दो व्यापारी थे जो हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। तो एक समय दोनों एक ही स्थान पर आ गए, तो एक दूसरे को जरा दिखाना चाहते थे, एक व्यापारी दूसरे को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा व्यापारी हूँ। तो उसने जानबूझ के एक हीरा, ऐसे थोड़ा बड़ा हीरा था, उसको गिरा दिया, ऐसे दिखाया जैसे गलती से गिर गया। और वो गिरता हुआ उस व्यक्ति के पास गया, दूसरे व्यापारी के पास। उसने उसको उठाया, देखा बहुत बढ़िया हीरा है, क्योंकि वो भी व्यापारी था, जानता था ये हीरा कितना कीमती है। तो उसने लाके उसको दिया, कहा कि बहुत बढ़िया हीरा है आपके पास, इतना बड़ा हीरा मैंने तो कभी नहीं देखा। तो व्यापारी ने कहा, ये तो मेरे पास जितने हीरे उनमें सबसे छोटा हीरा है ये तो। अर्थात वो अपना बड़ापन, अपना गुणगान करवाना चाहता था कि अरे कितना बड़ा व्यापारी। तो दूर बैठा एक व्यक्ति ये दोनों को देख रहा था, साधु स्वभाव का था। उसने उनको बुलाया, उसने कहा इधर आओ बैठ कर, हम लोग साथ में भोजन करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह एक हीरे का व्यापारी था बहुत समय पहले। ये कथा बताई गई है ऐसे समाज, ऐसे मरुस्थल की कथा जहां ऊंट लेकर जाया करते थे। तो उसने कहा कि एक दिन मैं भी ऐसे ही ऊंट पर जा रहा था, अचानक बहुत तेज तूफान आया, मेरा सब कुछ इधर उधर चला गया। मैं किसी तरह ऊंट को पकड़ कर रहा, मेरा सारा सामान इधर हो गया उधर हो गया, मैं रास्ता भूल गया। बड़ी देर तक, बड़े दिनों तक मैं घूमता रहा इधर उधर, बहुत समय हो गया और मैं अपनी, मेरे पास कुछ था नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा था कहाँ जाना है, मरुस्थल में था। कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई व्यक्ति मरुस्थल में फंस जाए और बहुत तेज तूफान आ जाए, फिर वो रास्ता भूल जाता है, क्योंकि चारों तरफ केवल रेत रेत होती है, उसको समझ नहीं आता है कहाँ जाना। तो मैं फंस गया और मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, और उस समय मैं भूख से मरा जा रहा था, कुछ खाने को नहीं था, सब कुछ इधर उधर बिखर गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। एक पोटली बची थी, मैं बार बार उसमें देखता लेकिन कुछ नहीं मिला, और अंतिम बार मैंने एक बार और देखा कि कुछ तो मिल जाए, बहुत भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था प्राय मर जाऊंगा। और फिर एक छोटी सी पोटली उसके अंदर दिखाई दी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं बहुत प्रसन्न हो गया, जल्दी जल्दी मैंने उसको लिया और खोला, लेकिन खोल कर क्या पाया, उसके अंदर केवल हीरे थे, कुछ खाने के लिए नहीं था, केवल हीरे पड़े थे। मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे फेंकने पड़े, वो फेंक दिए मैंने, क्या करता उसका, मुझे भूख लगी थी। तो ये कहानी से वो सिखला रहा था कि जब हमें सही दृष्टि में आवश्यकता होती है तब ये चीजें हमारे कार्य नहीं आती। कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में हीरे नहीं फेंक सकता या हीरे देखकर दुखी नहीं हो सकता, लेकिन उस अवस्था में जहां उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था, उसने सोचा शायद इस थैली में कुछ है, जैसे ही खोला हीरे, बड़ा निराश हो गया। तो वही चीजें जो उसे कुछ समय पहले बड़ी आशा दिलाती थी, जब वो व्यापारी था वो हीरो को देखकर इतना आनंद, इतने उत्साह में आ जाता था, वही चीज उसको निराश कर देती है। ये भौतिक जगत है, हम लोग भी एक मरुस्थल में हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों पर आनंद ले रहे हैं, लेकिन असली चीज को भूल रहे हैं। असली चीज है ज्ञान, इस जगत का ज्ञान लेना। तो असली ज्ञानी वो है, असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वेदों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करता है और फिर उसे अपने जीवन में उतारता है। केवल जानना पूर्ण नहीं है, केवल जानने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, कोई बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वेदों का ज्ञान लेता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तब बनता है जब वेद पढ़ता है। और एक प्रश्न यक्ष ने किया कि व्यक्ति महान कब बनता है, किसे महान कहते हैं, महत किसे कहा जाता है। क्या ऐसा गुण है जो उसे महान बनाता है? हम लोग सोच सकते हैं, बहुत सारे गुण हैं, किसी के पास बहुत धन है, बड़ा महान हो गया, यश है, महान हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या के कारण वो महान बनता है, ये महत्वगुण है। लेकिन तपस्या भी तीन गुणों में रहकर की जाती है। तपस्या तमोगुणी हो सकती है, तपस्या रजोगुणी हो सकती है, तपस्या सत्वगुणी हो सकती है, या फिर तपस्या गुणों के परे गुणातीत हो सकती है। तो जब हमारी तपस्या तमोगुण में है तो हमारी तपस्या के बाद उत्पात होता है, जैसे राक्षसों की तपस्या। अगर हमारी तपस्या रजोगुण में है तो हमारी तपस्या के बाद हमारा भौतिक बंधन बढ़ जाता है। अगर हमारी तपस्या सत्व गुण में है तो हमारी तपस्या के बाद इस भौतिक जगत में हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है। और अगर हमारी तपस्या गुणातीत है तो फिर हम कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए तपस्या से महान व्यक्ति बनता है, लेकिन कौन सी तपस्या? तपस्या जो कृष्ण के पास ले जाए, बाकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी तपस्या कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है तो फिर वो तपस्या व्यर्थ है। इसीलिए हमें ऐसी तपस्या करनी चाहिए जो भक्ति को बढ़ाए, और भक्ति में तपस्या आवश्यक है। क्योंकि तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है अपनी इच्छा से ऐसे कष्टों को लेना जो भक्ति में लाभदायक है, उसे तपस्या कहते हैं, बाकी कोई तपस्या नहीं है। अगर हम अपनी इच्छा से, जैसे उपवास करना, पूरा पूरा दिन नहीं खाना, ये अपनी इच्छा से हम लोग थोड़े बहुत कष्ट लेते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये सही तपस्या। या फिर सुबह सुबह मंगल आरती में उठना, जैसे आप लोग कभी कभी साल में एक दो बार उठते हैं जन्माष्टमी या रथ यात्रा पर, तो वो भी तपस्या है, एक ही दिन की है लेकिन है। तो ऐसी तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो करते हैं, और ये आवश्यक है, क्योंकि तपस्या से हमारे हृदय की आसक्तियां कम होती हैं, भोग प्रवृत्ति चली जाती है। जो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, अर्थात वो बहुत बड़ा भोगी है, इतना भोग में लगा है कि उसके लिए भगवान की प्रसन्नता भी ये बाद की बात है, उसके लिए प्रमुख चीज है उसका भोग, उसकी इंद्रिय तृप्ति, इसीलिए वो तपस्या नहीं कर सकता। तो युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि महान वो होता है जो तपस्या करता है। फिर और एक प्रश्न किया था यक्ष ने, अमृत क्या है उसको समझाओ। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, गाय का दूध ये अमृत कहलाता है। महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा अमृत क्या है, उनका गाय का दूध। वैसे अगर हम लोग अन्य शास्त्रों में भी देखें, विशेष करके आयुर्वेद में, तो बड़े विस्तार से गाय के दूध का वर्णन किया गया है कि ये ऐसे चमत्कारी पदार्थ है, ये अमृत के समान ही माना गया। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसका भी वर्णन किया कि गाय का दूध ये अमृत के समान है, और ये बड़ा चमत्कारी पदार्थ है। गाय घास खाती है और घास से दूध बन जाता है, वो कैसे बनता है वो तो भगवान ही जानते हैं। हम लोग कभी घास को लेकर अगर मिक्सी में मिलाएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है कि इसका हर, इससे उत्पन्न हुआ हर पदार्थ ही उपयोगी है, केवल गाय ही ऐसा प्राणी है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि कृष्ण को गाय ही क्यों पसंद है, उन्हें गोपाल कहते हो तो इसलिए कि उन्हें गाय पसंद है, तो क्यों गाय पसंद है? बकरी भैंस क्यों नहीं पसंद आ रही, वो भी तो कृष्ण की सृष्टि के अंग है, वो भी तो कृष्ण ने सृष्टि किया है। भले हम लोग भैंस देखकर अच्छा नहीं लगता हमें, भैंस का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो कृष्ण की सृष्टि, तो कृष्ण को भैंसे क्यों नहीं पसंद है। सोचिए अगर कृष्ण को भैंसे पसंद होती तो कितना गुणगान हो गया होता भैंसों का, अभी भैंसों की सुंदरता का, भैंसों के दूध का, भैंसों की बुद्धि का इत्यादि। केवल अगर कृष्ण को पसंद होती भैंसे तो, बट कृष्ण को पसंद नहीं। तो किसी ने प्रश्न किया क्यों गाय ही क्यों कृष्ण को पसंद, तो पहला उत्तर तो ये है कि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण को पसंद। आप बाध्य थोड़ी कर सकते हो कृष्ण को कि आपको गाय नहीं भैंस को ही पसंद करना पड़े, कृष्ण की इच्छा है, किसी को भी पसंद कर सकते। और दूसरा गाय के चमत्कारी गुण, इतने सारे उनके अंदर गुण हैं कि गाय का मल भी से गोबर कहते हैं, वो भी बड़ा उपयोगी है, गोमूत्र उपयोगी है। तो ऐसे ये चमत्कार है दरअसल, कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज स्वयं कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गाय का दूध पिए, भैंस का दूध पीने से सब भैंस के समान हो जाते हैं, है ना, सही बात है ना, सही है। आप गाय का दूध पीते हो कि भैंस का? गाय का दूध पीते हैं। वैसे भैंस की बुद्धि होती भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो व्यवहारिक तौर पे। अगर हम लोग सड़क पर गाड़ी में जा रहे हैं, सामने सड़क पर भैंसे आ जाए, आप कितना भी हॉर्न बजे वो साइड में नहीं हटती, लेकिन अगर गाय होगी एक हॉर्न बजाइए गाय साइड में चली जाती है। ये तो व्यवहारिक तौर से हम लोग देख सकते हैं। भैंस को तो बजाते रहो, इसीलिए हिंदी में एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, गाय के आगे बीन बजाना नहीं है, भैंस के आगे बजाना। तो ऐसा है। खैर युधिष्ठिर महाराज से ये भी हुआ। फिर युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न किया कि सबसे बड़ा धन क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ज्ञान ये सबसे बड़ा धन है। देखिए हम लोग सोच सकते हैं हमारे लिए हीरे सोना चांदी डॉलर या और चीज़ें बहुत बड़ा धन है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि ज्ञान ये सबसे बड़ा धन है। और वो भी कैसा ज्ञान, जिसका साक्षात्कार हो। एक कथा है, एक स्त्री थी, बड़ी साधारण स्त्री, वो दूध दिया करती थी, गाय का दूध सब लोगों को घर में जाकर देती थी। तो एक पुजारी थे, पुरोहित थे, उनके घर में जाने के लिए उसको नदी पार करनी पड़ती थी और बहुत तकलीफ होती थी। कभी कभी नदी का पानी का बहाव तेज होता था, उसको इंतजार करना पड़ता था कोई बोट वाला आए लेके जाए, तो हमेशा वो समय पर दूध नहीं दे पाती थी वहाँ जाकर, और हमेशा वो चिल्लाता था, बोलता था अरे तुम समय पर नहीं आई हो, मेरा रह गया कार्य इत्यादि इत्यादि। तो बेचारी बोलती मैं क्या करूँ, नदी में इतना तेज पानी था, बोट वाला नहीं आया इत्यादि इत्यादि। तो एक दिन जब उसने ऐसा बोला तो उसने कहा अरे भगवान का नाम लेकर लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुमसे एक नदी पार नहीं होती है। तो इसने सुना बड़े ध्यान से, तो इसने कहा क्या कहा, भगवान का नाम लेने से लोग बड़े बड़े सागर भवसागर पार कर देते हैं, तुम ये छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते। तो उसको पूरा विश्वास हो गया, उसने कहा ठीक है। तो फिर एक दो दिन निकल गए, उसके बाद उस पंडित ने देखा पुजारी ने कि अब वो बिल्कुल समय पर आते हैं, जो समय कहा था उसी समय पर आकर दूध दे। दो दिन तीन दिन चार दिन चले गए, तो सोचने लगा अचानक क्या हो गया, पहले तो ये कभी समय पर नहीं आए, अब अचानक हर रोज समय पर आ गए। तो उसने उसको पूछा कि तुम समय पर कैसे आते, आपके कारण मेरे कारण कैसे, आपने ही बताया ना कि भगवान का नाम लेकर लोग भवसागर पार कर जाते, तो मैं नाम लेकर ये नदी पार करके आ जाते। तो उसने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जो प्रचारक होते बात तो बड़ी बड़ी कर देते लेकिन अंदर कुछ जाता नहीं, सही है ना। तो उसने भी बोल दिया था भगवान के नाम से भवसागर पार हो जाते, लेकिन उसको विश्वास नहीं था। तो उसने कहा ऐसे तो कैसे आ? नाम लेती हूँ चली आती हूँ ऊपर से। तो उसने कहा ठीक है मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ नहीं। तो आए दोनों, नदी नदी आई, वो जो स्त्री थी वो आराम से चली गई, नदी के ऊपर चलने लगी और वो जा रही थी तो अचानक उसने पीछे देखा तो बड़ी जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि अरे पंडित जी, आपने ही तो मुझे बताया था कि नाम पर से श्रद्धा हो तो पार कर सकते हैं, अब आप पार हो। उसने देखा कि वो पार करने जा रहा था, वो भी प्रयास कर रहा था लेकिन वो पानी में बार बार गिर रहा था। तो उसने कहा कि आप पार करना चाहते हैं लेकिन पहले अपनी धोती ऊपर कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि धोती गीली हो जाएगी, आपको इतना भी विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर तो नदी कैसे पार करेंगे। अर्थात उसने समझाया कि हमें जो ज्ञान है वो केवल बोलना नहीं चाहिए या केवल सुनना नहीं चाहिए, उसको साक्षात्कार करना चाहिए, वो आवश्यक है। जब तक ज्ञान, प्रभुपाद समझाते हैं, ज्ञान जब साक्षात्कार हो जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है। नॉलेज व्हेन इट इज रियलाइज्ड बिकम्स साइंस, ज्ञान विज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने भगवद्गीता में बताया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों दे रहा हूं तुम्हें। तो इसीलिए इस ज्ञान को साक्षात्कार करना चाहिए, जो भी ज्ञान हम लोग लें, भगवद्गीता से, भागवत से, जो भी ज्ञान हम स्वीकार करें उसका साक्षात्कार, उसको समझना चाहिए, केवल बोलना नहीं चाहिए या केवल नाम के लिए उसको सुनना नहीं चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। और दो प्रश्न बहुत सुंदर उसने पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग देने से व्यक्ति बड़ा प्रिय बन जाता है, ऐसी कौन सी चीज है, अर्थात किस वो चीज को त्याग देता है तो वो बहुत प्रिय बन जाता है दूसरों का। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, अहंकार। अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तो फिर बहुत जल्दी दूसरों का बहुत प्रिय बन जाता है, तब वो प्रिय हो जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, दंभ रहता है, तब तक वो दूसरों से तो द्वेष करता ही है, ना तो किसी से प्रेम कर पाता है और ना किसी से मित्रता, अहंकारी व्यक्ति। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसीलिए किसी से मित्रता नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, किसी का प्रिय नहीं होता। लेकिन जब अहंकार निकल जाता है, अहंकार को त्याग देता है, तब वो बहुत जल्दी दूसरों का प्रिय बन जाता है। क्योंकि अहंकार रहित व्यक्ति दूसरे को आदर सम्मान दे सकता है, अहंकार रहित व्यक्ति प्रेम दे सकता है। एक संबंध में ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। कोई भी संबंध के आधार हैं प्रेम, आदर, सम्मान। किसी भी संबंध में अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, एक दूसरे की चिंता नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे के, अगर एक दूसरे के विचारों को अगर कोई व्यक्ति सम्मान नहीं दे पाता या उसको समझने का प्रयास नहीं करता तो फिर संबंध टिक नहीं सकता। और अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरों के विचारों को नहीं सुनता, कभी दूसरों के विचारों पर विचार नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं जो कहता हूं वही सही है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जब व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है तब फिर वो दूसरों का प्रिय बन जाता है। तो देखिए हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं एक एक उत्तर में युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं कि अगर हमें पहले भक्त समाज में अगर देखें कि बाकी भक्तों का प्रिय बनना है तो अहंकार त्यागना चाहिए, कृष्ण का प्रिय बनना है तो अहंकार त्यागना चाहिए। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ना तो कृष्ण से प्रेम करता है ना कृष्ण के भक्तों से, वो दिखावा करता है। कनिष्ठ अधिकारी जब शुरुआत की अवस्था में होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा भगवान से प्रेम दर्शाता है। कनिष्ठ अधिकारी दो ही चीजें देखता है, खुद को और भगवान को, उसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। वो भक्तों को नहीं देखता, वो भक्तों का आदर सम्मान नहीं करता, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो दरअसल वो भगवान का भी इतना आदर सम्मान नहीं करता, क्योंकि अहंकार है उसके अंदर। इसलिए जब इस अहंकार को त्याग देते हैं तो फिर वो प्रिय हो जाता है। फिर और एक प्रश्न बहुत अच्छा है जिसको यक्ष ने पूछा कि ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग देने से व्यक्ति बहुत धनवान हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने से वो धनवान हो जाता है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा इच्छाएं। जब तक इच्छाएं हैं व्यक्ति के हृदय में तब तक वो धनी नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता, अमीर नहीं कहलाता। दरअसल जो व्यक्ति बहुत सारी इच्छाओं को लेकर जीतता है वो सबसे गरीब व्यक्ति है, क्योंकि कभी संतुष्ट नहीं होता। इच्छाएं, जैसे हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप प्रकट करती हैं इच्छाएं। इच्छाओं के माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत के रूप में देखते हैं, और इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। एक बार एक कथा हमने आपको सुनाई थी, एक बार एक लड़का, दो मित्र जा रहे थे, तो एक मित्र ने देखा दूसरा बड़ा दुखी है, तो उसने पूछा क्या हो गया? उसने कहा कि 2 हफ्ते पहले मेरे दादा गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसने कहा अरे बहुत बुरा हुआ। बोले उन्होंने मेरे लिए 50 लाख रुपया छोड़ा। अच्छा, फिर कहा पिछले हफ्ते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत बुरा हुआ, उन्होंने भी मेरे लिए 7 लाख रुपये छोड़ा। तो लेते हैं दुखी क्यों है? तो इस हफ्ते कोई मरा नहीं है मेरा, 50 लाख मिले 7 लाख मिले इस हफ्ते क्या? इच्छाएं हमारी, दरअसल इच्छाओं की तुलना अग्नि से की गई है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि 2 प्रकार से कार्य करती है। एक, अगर उसको सही उपयोग किया जाए तो वो हमारे लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है अग्नि से, और वही अग्नि चिता में भी जलती है, व्यक्ति को जला भी देती है। तो दोनों कार्य करती है, व्यक्ति को जीवित भी रखती है भोजन करा के, और व्यक्ति को जलाकर समाप्त भी कर सकती है अग्नि। तो दोनों तरह से कार्य करती है। इसी तरह इच्छाएं हैं, इच्छाओं की तुलना अग्नि से की गई है कि जिस प्रकार अग्नि दोनों कार्य करती है, इसी प्रकार इच्छा भी ऐसे करती है। इच्छा व्यक्ति को समाप्त भी कर सकती है या फिर व्यक्ति को पोषण भी दे सकती है, इच्छाओं के ऊपर है। एक बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है इच्छाओं के दृष्टि में, इच्छाओं के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, यह कहना चाहिए कि एक पहेली है। उसमें लिखा है कि यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत्। ये वर्णन किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? यया बद्धा, जो बद्ध है, जो बंधा हुआ है, प्रधावंती, देख रहे हैं कि वो हर जगह भाग रहा है, चेन से बंधा हुआ है, अलग अलग प्रकार की चेनों ने उसको बांध रखा है, लेकिन प्रधावंती हर जगह भाग रहा है, और मुक्त तिष्ठन्ति, और जो मुक्त व्यक्ति है वो एक जगह पर बैठा हुआ है, तिष्ठन्ति पंगुवत्, जैसे हिल नहीं सकता। तो ये वर्णन किया गया है, यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत्। बड़ा विचित्र बात है ना, अरे जो बंधा हुआ है चेनों से वो कैसे सब जगह भाग सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो मुक्त हुआ है, जिसको कोई बंधन नहीं है, वो एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है कोने में। तो ये इच्छाओं के लिए बताया है कि जो इच्छाओं से बंधा हुआ है व्यक्ति, वो भागता रहता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और सही है ना, सारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता रहता। प्रधावंती, यहां से वहां, वहां से वहां, क्यों भागता रहता है? ये आबद्ध, क्योंकि बंधा हुआ है, इसीलिए भाग रहा है, इच्छाओं ने बांध कर रखा है उसको, और इच्छाओं के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए सब जगह भागता रहता है, कभी बेलगाम में, कभी बंबई में, कभी मारेगांव में, कहीं संतुष्ट नहीं। लेकिन जो मुक्त है, मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत्, जो मुक्त व्यक्ति है उसको ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो बड़ा शांत है, प्रशांत आत्मा, बहुत शांत है। क्यों शांत है? मुक्त है इच्छाओं से, इच्छाओं के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इच्छाओं की तुलना अग्नि से की गई है, इच्छाओं की तुलना उन बंधनों से की गई है जिसके कारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में भागता रहता है, और इच्छाओं की तुलना एक सती स्त्री से की गई है, चेस्ट वाइफ, इच्छाओं की तुलना। बड़ा उल्टा है ना यहाँ पर, क्या अरे ये कैसे उल्टा कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन किया गया। इसमें बताया है कि तीन चीजें व्यक्ति को बहुत कष्ट देती हैं, श्रुत त्रित आशा। श्रुत त्रित आशा मतलब भूख, प्यास और इच्छाएं। और फिर आगे उसमें वर्णन करते हैं, तासाम आशा महायोगी महासाध्वी, तासाम आशा महासाध्वी। अगर ये तीन पत्नियां कही जाएं किसी व्यक्ति की, श्रुत और आशा, तो इन तीनों में महासाध्वी अर्थात एकदम सती स्त्री है आशा। क्यों है? सती स्त्री का क्या स्वभाव होता है? वो अपने पति को कभी नहीं त्यागती किसी भी अवस्था में। हमने सत्य पिछले मंगलवार को कथा सुनी थी ना, सावित्री और सत्यवान की, अपने पति को कभी नहीं त्यागती, महा साध्वी। तो इसी तरह इन तीनों चीजों में, भूख, प्यास और आशा में, आशा महासाध्वी एकदम सती स्त्री है, कभी नहीं त्यागती, हमेशा बनी रहती है। अगर आदमी को भूख लगी है वो थोड़ा खा लेता है, उसके बाद उसकी भूख मिट जाती है, थोड़ी प्यास है पी लेता है, समाप्त हो जाती है, लेकिन आशा वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए इसकी तुलना एक ऐसी पत्नी से की गई है जो बड़ी सती है, अपने पति को कभी नहीं त्यागती। तो इसी तरह आशा, इसी तरह इच्छाएं हैं जो कभी नहीं त्यागती हमें, हमेशा हमारे पीछे लगी हुई है, हमेशा हमें बंधन में डालती हैं आशा, और जिसके कारण हम लोग इस जगत में घूमते रहते हैं, आशा पाशे फिरे, आशा के पाश में बंधन में फंस जाते हैं। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं इसकी शुरुआत होती है मन से। जब हम लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, मन में ही सोचने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो इच्छा, वैसे ही जो इच्छा है, इच्छा से हमारी हमारा भविष्य बनता है, हमारा भाग्य बनता है। ऐसा बताया गया है कि इच्छाओं को बड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं आगे चलकर शब्द बन जाती हैं, हमारी वाचा में आ जाती हैं, हम बोलने लगते हैं। बड़े स्वाभाविक है, जो हमारे मन में चल रहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा, और धीरे धीरे कुछ आप देखेंगे कि वह व्यक्ति उस चीज को बोलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति के साथ ज्यादा रहा जाए तो उसको पहचाना जाता है उसके बोलने से, वो क्या बोलता है, क्योंकि उसके बोलने से उसके मन की इच्छाएं प्रकट होती है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः कामः क्रोध विजायते। तो इसीलिए इसकी शुरुआत होती है हमारे मन से, इच्छाओं की। फिर इच्छाएं, इच्छाओं को बड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे शब्द बन जाते हैं, और हमारे शब्दों को संभालना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे कार्य बन जाते हैं। अर्थात जो हम बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, फिर एक दिन वो कर भी देते हैं, केवल बोलते नहीं रहते, फिर कर लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हो, उसके मन में किसी ने इच्छा डाल दी कि चलो शराब पीना चाहिए, वो इच्छा बढ़ती गई, फिर वो बोलने लगा कि ठीक है शराब पीने में कोई गलती तो नहीं है, और फिर धीरे धीरे कार्य। तो इच्छा से शब्द या वाचन, फिर उससे हमारे कार्य बनते हैं, और हमारे कार्य हमारा भाग्य बनाते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करेंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत होती है इच्छा से, जीव इच्छा करता है, फिर इच्छा के बाद उसको बोलने लगता है, फिर उसके बाद उसको कार्यान्वित करता है, और फिर उसके बाद उसका भविष्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान भगवद्गीता में समझाते हैं, ध्यायतो विषयान्तो सत्संगस्ते शुभजायते, संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सब समाप्त हो जाता है। शुरुआत होती है ध्यायतो, ध्यान से। हम क्या सोचते हैं हमारे मन में, ध्यायतो क्या सोचते हैं, विषयान, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं, ध्यायतो विषयान प्रसार, फिर उनसे आसक्ति बढ़ जाती है, संगस्ते शुभजायते और संगात संजायते काम, फिर आसक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि हम किसी ना किसी तरह उसको पाना चाहते हैं, उस चीज को करना चाहते हैं। कामात क्रोध विजायते, जब वो चीज नहीं मिलती है तो क्रोध प्रकट होता है, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध में व्यक्ति क्या कर रहा है वो खुद नहीं जानता। रविवार को हमने वर्णन किया था क्रोध का, है ना, याद है ना, क्रोध और प्रेम, क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है, क्रोधार्थ भवति सम्मोह, और जब ऐसा हो जाता है मोह में पड़ जाता है, सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसलिए ऐसे ध्यान हमें किसका, तो हमें जो इंद्रिय, हमें जब इच्छाओं को रोकना है तो कहाँ रोकना चाहिए, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मन में, उनको वहीं पर बंद कर देना चाहिए। अगर उनको हमारे शब्दों में आने दिया तो धीरे धीरे कार्य में चली जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मन में ही रोकना चाहिए। इसीलिए ध्यान किसका करना चाहिए, ध्याय तो विषयानुपुंसा, मतलब विषयों को छोड़कर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण का ध्यान कर सकें। और अगर कृष्ण का ध्यान हम लोग करते हैं बड़े प्रयास से, जितना हो सके उतना प्रयास हम करें अगर कृष्ण के स्मरण का, तो फिर आगे चलकर हम लोग भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा कर सकेंगे, भगवान को जान सकेंगे और भगवान की भक्ति बड़े आराम से कर सकेंगे। तो इसीलिए इच्छा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको त्याग देता है तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कहलाता है। तो इसलिए हमें इच्छाओं को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। और भी बहुत सारी प्रश्न हैं, अगले मंगलवार को हम लोग दो तीन और प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे। या आप लोग और सुनना चाहते हैं, 100 प्रश्न हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं सारे प्रश्नों का, आगे बढ़ लीजिए। अच्छा, कितने लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत बढ़िया, बोर हो गए इतना सुन के, नहीं सुनना चाहते। इसलिए ऐसा होता है ना, प्रश्न भी ऐसे पूछते कि आप लोग ना बोल भी नहीं सकते। ठीक है, जितने ज्यादा हो सकेंगे अगले मंगलवार को एक और क्लास यक्ष सम्मान पर करेंगे, और फिर पांडवों का अज्ञातवास, कैसे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, और फिर आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। दो मिनट है, किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं।
धर्मराज तो दूसरे के संपत्ति को नहीं भोगना ऐसा कह दिया, आजकल बूढ़े लोग तो अपने संतानों के आधार पर ही जीते रहते हैं, क्या बच्चों का कोई हम डिपेंड होना तो कोई गलती है, क्या दूसरों का संपत्ति हम भोगने जैसा होता है?
बच्चे